निगाहें रख आसमां पे, घुमा दे तू रुख दरिया के। तू बन जा वो समंदर कर पार सके ना कोई, रख आग तू ऐसी अंदर ललकार सके ना कोई, जा को राखे साया मार सके ना कोई, जा को राखे साया मार सके ना कोई, सच की राह पे जाते हैं, उस लौ से तू भी रोशन कर मशाले बंदिया। ओ जितने हो अंधेरे एक लौ से डर जाते हैं, उस लौ से तू भी रोशन कर मशाले बंदिया। अब तो ये मौका है तू हिम्मत वो दिखला दे, कि जमाना दे ये तेरी ही मिसालें बंदिया। ऐसा इतिहास रचा दे नकार सके ना कोई, औलाद हो तेरे इरादे ललकार सके ना कोई, जाको राखे साया मार सके ना कोई, जाको राखे साया मार सके ना कोई, सच की राह पे
साथ न देखे हर गली तू कैसे कर दे, है राहों का रात भी देखे फिर न देखे रात न देखे, ये कदम पर साथ न देखे हर गली तू कैसे कर दे, है राहों का रात भी देखे।
तू खेल जाए सी बाजी के पछाड़ सके ना कोई, वो लहू जो तेरा राजी ललकार सके ना कोई, जाको राखे साया सके ना कोई, जाको राखे साया मार सके ना कोई, सच की राह पे राहिया हार कभी ना होई, जाको राखे साया मार सके ना कोई, जाको राखे साया
शांति। किसी एक महानगरी में एक बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ। उसका नाम थोड़ा अजीब था, कोटिकर्ण। जब उसने संन्यास दीक्षा नहीं ली थी तब वो बहुत धनवान था, और उसके कानों में स्वर्ण की बालियां लगाता था, इसलिए उसका नाम था कोटिकर्ण। तो ये जो भिक्षु था बहुत अद्भुत तपस्वी वैरागी, उसकी वाणी में अद्भुत सा आकर्षण था, और गांव के लोग वहां एकत्र होते थे और ज्ञान की वर्षा होती थी। जब उसके पास बहुत धन था, अंदर एक रिक्तता थी, एक खालीपन था। और फिर जब उसने वो सारा धन छोड़ दिया, तब वास्तव में धनी बना। जब चेतना अनुभव के शिखर पर चढ़ती है, तो संसार का पैसा, धन, प्राप्तियां, प्रतिष्ठा, संसार की बातें, सब कुछ स्वतः ही निरर्थक, व्यर्थ हो जाती है। फिर उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता। ऐसा ही कुछ इस कोटि कर्ण श्रोण के साथ हुआ। उसमें मौन था, एक आकर्षण था। उस शहर निवासियों को वो उस मौन के आकाश में ले जाता, जहां पर स्वतः ही चित्त शांत हो जाएगा। ऐसा सबको अनुभव होता। उसी सभा में एक दिन एक बहुत धनवान स्त्री आकर बैठी। धम्मपद की ये कहानी है। वो जो स्त्री थी, कात्यायनी, वो आकर बैठी और ऐसी खो गई सुनते सुनते चित्त की गहराई की बातें, अध्यात्म की बातें, संसार से विरक्ति की बातें, कि वो खो गई। शाम का समय था, उसने अपने दासी से कहा कि जाओ, घर जाओ और दिया लगा के आ जाओ। वो दासी उस भवन में गई और देखा वहां पर चोर है और चोरों का सरदार घर के बाहर रखवाली दे रहा है और अंदर वो सारे चोर चोरी कर रहे हैं। वो घबरा गई और घबरा के वापस भागी उस सत्संग की ओर जो गांव के बाहर हो रहा था। उस घबराई हुई दासी को देखकर चोरों के सरदार ने उसका पीछा किया और वो भी वहीं आ पहुंचा जहां वो दासी आई। और उस दासी ने अपनी स्वामिनी से कहा कि जल्दी चलो, घर में चोर घुस आए हैं। परंतु वो गृह स्वामिनी ऐसी खोई हुई थी, अमृत वचन सुनते सुनते कि सुनते हुए भी नहीं सुन रही थी और देखते हुए भी कुछ नहीं देख रही थी। दासी ने फिर कहा, चलो, वो चोर सेंध लगा रहे हैं, वो चोर घर के अंदर घुस रहे हैं, सारा सामान, स्वर्णाभूषण लूट कर ले जा रहे हैं। वो कात्यायनी कहती, वो श्राविका कात्यायनी कहती है कि वो जो लूट के लेके जा रहे हैं वो सब नकली है। मैं जब अज्ञान में थी तो उन्हें असली समझती थी, पर अब जब ज्ञान के नेत्र खुले हैं तो वो सब कुछ नकली है। जो लोग चुरा के ले जा रहे हैं उनको चुरा ले जाने दो, जब उनकी भी आंखें खुलेगी तो वो भी जानेंगे कि वो सभी स्वर्ण राशि नकली है। चोरों का सरदार वहां बैठा है चुपके से और सुन रहा है, और अचानक से बिजली सी कौंध गई, अचानक से महापरिवर्तन का वो समय था उसका। शायद किसी जन्म की पुण्य राशि हो, पारमिता, बौद्ध भाषा में उसको पारमिता कहते हैं, पाली भाषा में पता नहीं किस जन्म की पारमिताएं होगी कि अचानक से कुछ हुआ, अंदर चेतना झंकृत हुई। वो गया और अपने साथियों से कहने लगा कि ये जो धन की बोटलियां यहीं छोड़ दो, सब नकली है, क्योंकि असली का ज्ञान, असली की झलक अब मुझे मिली है। वो बाहर नहीं, वो भीतर है। उस गृह स्वामिनी ने कहा था कि मुझे वो ज्ञान मिला है, मुझे वो स्वर्ण मिला है जो मेरे ही भीतर है, जो मेरे ही भीतर चमक रहा है। और उसके वो वचन उस चोरों के सरदार के भीतर ऐसे घुस जाते हैं कि द्वार पट खुल जाते हैं बुद्धि के, चेतना के, वो कौन सा धन है जिसकी जागृति हुई। वो धन स्थूल नहीं, वो एक ऐसा धन है जो अदृश्य है, जो कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन के नहीं ले जा सकता, जो वो अविनाशी है और वो ज्ञान है। ज्ञान वो धन है, इसलिए हमारी साधना ज्ञान की साधना है। इस ज्ञान को जिसने जिस रीति से धारण किया और उतना ही वो परिपक्व होगा। कम धारण किया है तो कम परिपक्वता, ज्यादा धारण किया है तो ज्यादा परिपक्वता। किस रीति से किया है, कितना किया है और उस ज्ञान का कर क्या रहे, तो आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान को क्या कहा, धन का राजा। संसार में जितना जो भी है उन सभी धन का राजा ज्ञान है। शक्तियों का वर्णन है, ज्ञान की शक्ति क्या करती है, क्या कहा आज की मुरली में, क्या करती है ये शक्ति, तुम्हें क्या बना देती है, क्या बना देती है, परमार्थी बना देती है, क्या बना देती है, पद्मा पदम भाग्यशाली बना देती है, क्या बना देती है, सर्व प्राप्तियां करा देती है। सूक्ष्म धन जिसके पास है उसको कभी भी स्थूल धन की कमी नहीं होगी। अगर स्थूल धन की कमी है तो जरूर सूक्ष्म धन की कमी है। ज्ञान धन स्थूल धन को खींचता है, इसके लिए ज्ञान को बढ़ाना है। जहां तक ज्ञान अभी हमने समझा है वो संपूर्ण नहीं है, अभी बहुत बाकी है समझना। सुनाने वाले ने सब कुछ सुना दिया है पर हमारी समझ अभी भी पूर्ण नहीं है। स्थूल धन सूक्ष्म धन स्थूल धन को खींचेगा और स्थूल धन प्रकृति के पदार्थ को खींचेंगे, इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जो चाहिए जिस समय चाहिए जहां चाहिए वो स्वतः मिलेगा, आवश्यकता अनुसार मिलेगा और भविष्य में भी जन्म जन्म के लिए सर्व प्राप्तियां होगी, राजा बनेगी आत्मा। ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर, शक्ति के रूप में उसे लेना है, आत्मा में शक्तियां धारण करनी है और ज्ञान वो शक्ति है। और केवल ज्ञान किसी को शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है, ज्ञान का मनन शक्तिशाली बनाता है। ज्ञान को अंदर समाने दो, ज्ञान का अनुभव शक्तिशाली बनाता है। एक है सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, आत्मा के ये गुण, परमात्मा के वो गुण, ये परमधाम, ये संगम युग, ये भगवान आया है, ये ब्रह्मातन में आया है, विनाश सामने खड़ा है, जाने का समय आ गया है। सूचनाएं बहुत एकत्र की है, अनुभव कुछ और है। एक है सूचनाएं, एक है ज्ञान, एक है विजडम। विजडम अर्थात विवेक। उस ज्ञान ने विवेक का रूप धारण किया है और फिर वो ज्ञान प्रैक्टिकल हो जाए, वो ज्ञान दिखाई दे और वो ज्ञान शक्ति का रूप धारण कर ले, वो ज्ञान गुणों का रूप धारण कर ले, गुण दिखाई दे। ज्ञान दिखाई नहीं दे रहा है, गुण दिखाई दे रहे। जैसे देवताओं में शक्तियां दिखाई नहीं देती है, गुण दिखाई देते हैं, उसी तरह तीसरे नंबर की शक्ति कौन सी बताई आज की मुरली में, ज्ञान की शक्ति। ज्ञान को शक्ति के रूप में धारण करना। हमेशा से मनुष्य को शक्ति की खोज रही है, हर व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है, हर एक के अंदर ये इच्छा है कि बहुत पावरफुल शक्तिशाली बन जाऊं, केवल जो धर्म के क्षेत्र में है वही नहीं। क्यों ये सारे कार्टून, कॉमिक्स, मैगजीन्स, टीवी सीरियल्स, मूवीज ऐसे किरदारों पर बनी जिनमें सुपर पावर्स थी, जैसे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन, बैटमैन, बैटवुमन, वंडर वुमन, बहुत बड़ी लिस्ट है। एक मकड़ी काटती है तो मकड़ी की सारी शक्तियां उसमें आ जाती है, वो स्पाइडरमैन बन जाता है, दीवार पर चढ़ने लगता है, एक्सेलरेटेड हीलिंग, कोई चोट लगती है तो तुरंत घाव भर जाता है, इंक्रीज फ्रेजिलिटी, शरीर में लोच आ जाती है, कूदने लगता है, पावर आ जाती है, सुपर पावर्स, सुपर एजिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ, वॉल क्रॉलिंग, अचानक से शक्तियां जागृत हो जाती है, एक साधारण व्यक्ति था सुपरमैन बन जाता है। ये सुपर पावर्स की कल्पना हमेशा मनुष्य ने की है, भारतीय दर्शनों को देखो तो उसमें सिद्धियां है। आज की मुरली में बाबा ने सिद्धियों को भी याद किया, क्या कहा सिद्धियों के बारे में, तुम्हें सिद्धियां स्वीकार नहीं करनी है। सिद्धियों का वर्णन पतंजलि योग सूत्र में है कि जो भी योग के मार्ग में साधना करेगा उसे सिद्धियां मिलेगी, अष्ट सिद्धियां, 108 सिद्धियां, ढेर सारी सिद्धियां है, पानी पे चलना, आकाश गमन, संजीवनी सिद्धि, अहिमा, महिमा, गरिमा, बहुत सारी सिद्धियां है, जो चाहिए वो सामने आ जाए, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, अष्ट सिद्धियां। हमेशा भारतीय दर्शनों में भी शक्ति, जो असुर थे वो तपस्या करते थे, किस लिए करते थे, शक्ति के लिए। और ये जो विदेश के लोग जिन्होंने ये सारी फिल्में बनाई, वो धर्म को नहीं मानते परंतु शक्ति को जरूर मानते हैं। शक्ति चाहिए, सुपर पावर्स, आसमान में उड़ने लगू, कोई मर रहा है उसे जाके बचा लू, कोई पूरी की पूरी बस उठा लू, शक्तियां। परंतु सारी शक्तियों का स्रोत एक ही है, एक को साथ लो सारी शक्तियां सद जाएगी, सारी शक्तियां उस एक में समाई है। कितना उस एक के प्रति हम एकाग्र है, अपने आप सर्वशक्तियां हम में आने लगेगी, हमारे सामने फिर ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, स्टीलमैन, ही मैन, आयरन मैन, शक्तिमान, इनमें शारीरिक शक्तियां है, पर शारीरिक शक्ति के साथ मन की भी शक्तियां है, आने वाले खतरों का पहले ही अंदेशा हो जाता है, सुपर सेंसेस, पहले ही पता चल जाता है क्या होने वाला है, इंक्रीज मूवमेंट्स, शक्तियां। तो आज की मुरली किस पर है, शक्तियां। क्या है ये शक्तियां, वो नहीं, ये शक्तियां क्या है, वर्षा है, ये शक्तियां वरदान है, तीसरा जन्म सिद्ध अधिकार है, चौथा ये शक्तियां दवा है, ये शक्तियां माजून है, ये शक्तियां क्या है और क्या क्या है, मुरली से बाहर ये शक्तियां शस्त्र है तुम्हारे, ये शक्तियां मंत्र है तुम्हारी, ये शक्तियां क्या है, दवा, सूक्ष्म सुरक्षा कवच है तुम्हारा, ये शक्तियां क्या है, प्रॉपर्टी है तुम्हारी, जायदाद है तुम्हारी, ये शक्तियों की गिफ्ट बाप ने तुम्हें संगम युग पर दी है, शक्तियां उपहार है, प्रेजेंट है, शक्तियां प्राप्तियां है, शक्तियां सौगात शक्ति, शक्तियां तुम्हारा भाग्य है। और क्या है शक्तियां? आशीर्वाद है भगवान का, श्रृंगार है, अभिमान। कितनी हमने शक्तियां धारण की है बाबा। आज किसको देख रहे हैं? शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्पिरिचुअल पावर्स हमने जब से ज्ञान में आए तब से अब तक कितनी अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर्स भरी है, कितनी भरनी चाहिए थी, कितनी भरी। बाबा ने कहा सदा सर्व, यथाशक्ति नहीं, सदा और सर्व, सारी शक्तियां और सदा। सफलता का आधार, सक्सेस का आधार क्या है? पावर्स। पावर्स भरनी है आत्मा में, शक्तियां भरनी है। एनर्जी लेवल जब लो हो जाती है तब विकारों की प्रवेशता होती है, या फिर विकारों की एक परिभाषा है लो एनर्जी लेवल्स। जैसे ही चेतना की एनर्जी लेवल बढ़ती है पावर बढ़ने लगती है। लो हो गई तो विकारों की तरफ आकर्षण, इंद्रिय सुखों की तरफ आकर्षण होता है। जो जो चीज सुख देती है उसमें आकर्षण होता है, और जो सुखद है उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, और जो दुखद है उसके प्रति द्वेष। खेल यही चलते रहता है जीवन भर। जो जो सुखद संवेदनाएं हैं उसके प्रति राग और एडिक्शन, फिर वही चाहिए, उसमें उस व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति बीड़ी पीता है, दारू पीता है, वो एडिक्शन वास्तव में वो बीड़ी या दारू के प्रति है ही नहीं। वो पीने से उसके शरीर में जो तन बदन में सुखद संवेदनाएं उत्पन्न होती है, सुख की अनुभूति होती है, उसके प्रति वो एडिक्शन है। काम विकार उस दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध ही नहीं है। उसका संबंध उत्तेजनाओं से उत्पन्न सुखद संवेदनाओं से है। ये बहुत बहुत गहरी बात है। वो एडिक्शन व्यक्ति के प्रति नहीं है। इसके लिए स्त्री से या पुरुष से घृणा करके कभी भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं हो पाया, मुक्ति हुई नहीं काम से। काम से मुक्ति का एक ही मार्ग है समता भाव, साक्षी भाव। जो कुछ शरीर पर प्रकट हो रहा है उसे साक्षी होकर देखना, सुखद दुखद जो कुछ भी। भोक्ता भाव से देखेंगे तो उसमें डूब जाएंगे, फिर वो खींचेगा और उसकी स्मृति खींचेगी। अतीत के भोगे हुए भोग आत्मा को स्मृति में आते ही फिर से नीचे गिरती है चेतना। इसके लिए काम से मुक्ति का मार्ग है काम को समझना, वो कार्य किस तरह से करता है। उसके प्रति नफरत, उसके प्रति घृणा करके संपूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। ऊपर ऊपर से चेतन मन के तल पर मुक्ति होगी, बस अल्पकाल के लिए होगी, लंबे समय के लिए नहीं होगी, सदा के लिए नहीं होगी। और जैसे कहा, जैसे ही एनर्जी लेवल लो होती है विकारों का आकर्षण चालू होता है, जैसे एनर्जी हायर लेवल पर पहुंचती है फिर वहां कोई विकार नहीं है। निर्विकारी अवस्था पुरुषार्थ नहीं, परिणाम होगा। पवित्रता पुरुषार्थ नहीं, परिणाम है, रिजल्ट किसी और चीज का। तो शक्तियां तुम्हारा श्रृंगार है, शस्त्र है, जन्मसिद्ध अधिकार है, वर्षा है, वरदान है। कितनी सारी बातें कह दी। ये शक्तियां तुम्हारी सेवाधारी है, और तुम कौन? चतुर सुजान। कितनी शक्तियों का वर्णन किया आज? पहली तन, दूसरी मन, तीसरी धन, और चौथी संबंध। सबसे ज्यादा वर्णन किसका किया? धन का। इतना सा वर्णन है ज्ञान का, मन का तो इतना सा ही है, दो लाइनें हैं। धन का सबसे ज्यादा वर्णन है, सबसे ज्यादा वर्णन किसका है? तन का। दो बड़े बड़े पैराग्राफ। मन की शक्ति के बारे में क्या कहा? मन की शक्ति अर्थात संकल्प शक्ति, मन की शक्ति अर्थात शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्प, मन की शक्ति अर्थात जो मन कभी उदास ना हो, ऐसा पावरफुल माइंड जो घबराए नहीं, जो भटके ना, जो एकाग्र रहे, जो दुख को ग्रहण ना करे, उसको कहेंगे पावरफुल माइंड। चारों तरफ से विरोधी विरोध, चारों तरफ से निंदकों की सेना पीछे पड़ी है, चारों तरफ से तलवार लेकर लोग पीछे पड़े हैं मारने के लिए, परंतु योगी तटस्थ है, व्यर्थ से मुक्त है, उनके व्यर्थ संकल्प योगी को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि योगी के पास क्या होता है? द पावरफुल माइंड। उसके लिए यह सब खेल है, मिथ्या है, व्यर्थ है। मन की शक्ति अर्थात संकल्प की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, वो जो मन भटके ना। मन की शक्ति अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान, जहां पर सारी शक्तियां जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, जब आह्वान करना चाहो आ जाए, सेवाधारी हो जाए शक्तियां। ये क्या कहती है? अलंकारिक भाषा है। किसी को बुलाओ और वो आ जाए, क्या उनका कोई रूप है? कोई रूप नहीं, ये भाषा की अलंकारी भाषा है, सौंदर्य है। और किसी मुरली में बाबा ने यह भी कहा है कि तुम्हें आह्वान भी करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप शक्तियां प्रकट होगी, जिस समय जो शक्ति चाहिए वो। सहन करना है, अपने आप सहन करने की शक्ति आ जाएगी। कोई चीज समानी है, अपने आप समाने वाली शक्ति। मुरली में उदाहरण दिया शीतलता और आग, अपने समय पर आएगी। सामना करना है, विकराल परिस्थिति आ गई है, अपने आप शक्तियां प्रकट होगी। तो निरंतर शक्ति का चिंतन करना है, मुझ में शक्तियां है, अपनी शक्तियों को जगाना है। जैसे हनुमान भूल चुका था, किसी ने बताया तब जागृत हुई। यहां भगवान हमको रोज बताता है आत्मा में शक्तियां भरी पड़ी है। देवताओं की सभा हुई, काल्पनिक कहानी है। देवताओं ने सोचा कि मनुष्य को अगर वो सारी शक्तियां दे दे तो वो उत्पात करेगा, वो उपद्रव करेगा, इसलिए हमें सारी शक्तियों को छिपा के रखनी है। कहाँ छिपा के रखे? किसी देवता ने कहा आसमान के ऊपर छिपा के रख दिया जाए, मनुष्य कभी नहीं पहुंचेगा। पर बाकियों ने कहा कि नहीं, एक दिन मनुष्य हवाई यान की खोज करेगा और पहुंच जाएगा। किसी ने कहा समुद्र की गहराइयों में छिपा देते हैं, दूसरों ने कहा ना, वहां पर भी मनुष्य पहुंच जाएगा। किसी ने कहा गुफाओं में छुपा देते हैं सारी शक्तियां, जो मनुष्य को शक्तिशाली बना दे, सुपरमैन, सुपर पावर्स। किसी ने कहा जंगलों में। सब अपनी अपनी राय देने लगे, पर सब ने कहा नहीं, वहां मनुष्य पहुंच ही जाएगा। और एक देवता ने आखिर में कहा कि हम ऐसा करते हैं, शक्तियों को कहां छिपा दे? जहां मनुष्य कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, उसके मन में छिपा दो, उसकी अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में छिपा दो। वो सब जगह ढूंढेगा परंतु अंदर नहीं जाएगा, वहीं पर छुपा दो सारी शक्तियों को। तो हर एक में शक्तियां है, बहुत सारी पावर्स है, परंतु जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास, सारे दिन भर एक कागज को रख दो सूरज के नीचे, जलेगा ना? क्योंकि विकीर्ण है शक्तियां। एकाग्र हो जाए, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को रख दो और थोड़ी देर में कागज जलने लगेगा। जहां जहां एकाग्रता होगी वहां शक्तियां प्रकट होगी, जहां जहां पवित्रता होगी वहां शक्तियां प्रकट होगी। जहां जहां साधना होगी वहां शक्तियां प्रकट होगी, जहां तपस्या होगी वहां शक्तियां प्रकट होगी, जहां प्रभु प्रेम होगा वहां शक्तियां प्रकट होगी, जहां अशरीरीपन है वहां शक्तियां प्रकट होगी। स्वतः वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में। तो दूसरे नंबर की शक्ति है मन, माइंड को पावरफुल बनाना है। कैसे बनाएंगे माइंड पावरफुल? कैसे बने? चिंतन से, काम देना है उसको, बिजी रखने से, व्यर्थ से निरंतर मुक्त रहे, तब माइंड पावरफुल होगा। ड्रामा के ज्ञान से, ये सब कुछ यहां होना है। आज की मूल्य में बड़ा ही क्रांतिकारी वाक्य है एक, कौन सा? बहुत स्ट्रांग वाक्य है, छोटा सा है, कौन सा? बाप जानते हैं क्या? बाप जानते हैं क्या? जानते हैं क्या? जानते हैं आज की मुरली, आप हो कौन ये केवल बाप जानते हैं, तुम हो कौन ये केवल बाप जानते हैं और कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते। तुम हो कौन ये बाप जानते हैं। मुरली पढ़ के ढूंढना वो कहां है और उसको अपनी डायरी में नोट करके रखना। आप हो कौन ये बाप जानते हैं। मन को स्ट्रांग बनाने के लिए चाहिए चिंतन, मन को स्ट्रांग बनाने के लिए चाहिए मनन, मन को स्ट्रांग बनाने के लिए चाहिए अध्ययन, रीडिंग, हर दिन एक अव्यक्त मुरली का अध्ययन। साकार मुरली जो चल रही है वो चल रही है, पर हर दिन एक अव्यक्त वाणी का अध्ययन कंपलसरी। मन को आदत डालनी है, मन को आदत है उसे बाकी सब करना है, चिंतन नहीं करना है, क्योंकि उसे व्यर्थ अच्छा लगता है, व्यर्थ में इंटरेस्ट है। इसके लिए ज्ञान का अध्ययन करना, ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान में बुद्धि लगाना बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत है। मन शक्तिशाली बनेगा लिखने से, नए नए टॉपिक्स पर लिखना है। मन शक्तिशाली बनेगा एकांत में रहने से, मन शक्तिशाली बनेगा मौन से, उसे मौन में ले जाना है बीच बीच में, जब भी समय मिले। शब्द मन की शक्तियों को कम करता है, बोल, उसको सभी बोल से मुक्त कर देना। दिन में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कभी 6 घंटा, अगर सेवाएं देखते हुए, और बहुत सारी सेवाएं मौन में रहकर की जा सकती है। और जिस दिन हम मौन में रहकर सेवा करेंगे, उस दिन पता चलेगा कि जब बोल बोल के सेवा की जाती है तो कितनी शक्तियां खर्च हो रही है, कितनी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। मन को स्ट्रांग बनाना। बाबा ने कहा ज्ञान की एक एक पॉइंट का अनुभव करो, पढ़ो रुको, पढ़ो फिर रुको, पॉज, थिंक, क्या है ये तर्क। मन शक्तिशाली बनेगा तर्क शक्ति से। मन के 3 काम हैं, थिंकिंग, फीलिंग, डिजायरिंग, सोचना, महसूस करना, फील करना, और तीसरा इच्छा करना। ये मन के 3 फंक्शंस है। इन तीनों पर काम करना है, सोच पर काम करना, फीलिंग्स इमोशंस पर काम करना, और तीसरा डिजायर्स पर काम करना। मन क्या चाहता है? कितना भी त्याग के मार्ग में आगे चले गए, परंतु भोग की इच्छा उसमें छिपी है। मन की इस टेंडेंसी को समझना है, वो किस तरह से काम करता है, दबन हुआ है कहीं ना कहीं, छिपा के दबा के रखा है। मन को स्ट्रांग बनाने के लिए मन को पहले समझना होगा। वो कहां कहां बिखरा है, उसे क्या क्या चाहिए, उसको फेस करना है। हम उससे भागते हैं, विकार के संकल्प उत्पन्न हुए तो हम उसको दबा देते हैं, नहीं 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 ये नहीं है, उसको देखो ये है, इसका स्रोत कहाँ है, क्यों प्रकट हुआ। जरूर दिन भर कुछ देखा या सुना या पढ़ा जिससे वो इच्छा मन में प्रकट हुई। काम अवचेतन मन पर करना है, गहराई में करना है। ऊपर ऊपर से बहुत काम किया है उससे विकार तो हटे, पर सतही ऊपर से अंदर से अभी भी है, छिपे है। तो दूसरी शक्ति है मन की शक्ति, तीसरी शक्ति है धन जिसकी हमने चर्चा की। तो ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फिर से अव्यक्त मुरली का अध्ययन, साकार मुरली का अध्ययन, ज्ञान की चर्चा। हमारे मुख से ज्ञान निकलना चाहिए, तो ज्ञान के संस्कार ब्रेन में पड़ेंगे। जैसे कोई एक मार्ग होता है जंगल में, बार बार लोग वहां से जाने लगे तो एक पगडंडी तैयार होती है, वैसे ही न्यूरल पाथवेज क्रिएट होंगे यहां पर ज्ञान के नए संस्कार। वो कब होगा, ज्ञान को उगारने से, बोलने से, चर्चा करने से, आपस में ज्ञान की रूहरियान, आपस में ज्ञान की चर्चा कि ये क्या कह दिया उसने, ये क्या था मुरली में, इसका अर्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, एक एक शब्द का अर्थ क्या है। ये नया शब्द है, तुम बच्चों को बाप को उकीर रहता है, ये उकीर क्या है, ये माजून क्या है, ये चौप चीनी क्या है, नए नए शब्द आते हैं मुरली में, खोज करनी है शब्दों के अर्थों की, वाक्यों के अर्थों की, गुणार्थ की, वाक्यार्थ की, साधारण से दिखने वाले शब्दों के पीछे गहराई है। क्योंकि बोलने वाला उस परमधाम से उतर कर बोलता है अव्यक्त में, हम व्यक्त में नीचे है, स्पीकर यहां बैठा है, ऑडियंस यहां है, शब्द कानों पर पड़ रहे पर अर्थ खो रहे। वो अगर यहां है तो हमें भी अपने आप को उसी लेवल पर ले जाना पड़ेगा, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मैच तब होगी, नहीं तो हाथ में केवल शब्द रहेंगे, खाली शब्द, कोरे शब्द, निपट शब्द, आत्मा शक्तिशाली नहीं होगी। तो तीसरी शक्ति है ज्ञान की, चौथी संबंध, दो संबंध है, एक बाप से और दूसरा परिवार से, और दो चीजें मिलती है अगर संबंध अच्छे रहे तो, कौन से, स्नेह, कैसा स्नेह, अविनाशी निस्वार्थ, और सहयोग। तो एक संबंध बाबा से है, मुरली में कहा वो इंजीनियर भी है, वो वकील भी है, वो जज भी है, वो सब कुछ है, उसका दूसरों को अनुभव तब करा सकेंगे जब खुद किया है, वो गाइड है। जीवन में समस्या है, मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, और हम क्या करते हैं, सबको पूछते हैं उस एक को छोड़कर, उसको छोड़ना ही नहीं जब तक उत्तर ना दे। वो उत्तरों का सागर है, उसकी एक महिमा क्या है, वो समाधान का सागर है, हर प्रश्न का उत्तर है उसके पास, वो प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है, केवल ज्ञान का सागर नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है, वो थियोरी का सागर नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है। तो उस संबंध को शक्तिशाली बनाना ताकि सहयोग और स्नेह मिले, और इस परिवार में जो संबंध है उसमें भी श्रेष्ठ भावना है, जो भगवान की भावना है, चाहे कैसा भी कोई हो, कितने भी अवगुण किसमें हो। एक मुरली में बाबा ने कहा है बाप और बच्चे में क्या अंतर है, बच्चे अगर किसी में 9 गुण है और 1 अवगुण है तो बच्चे उस अवगुण को देखते हैं, और बाप क्या करते हैं, किसी में 1 गुण और 9 अवगुण है तो बाबा उस गुण को देखते हैं, यही अंतर है दोनों में। और ये बहुत बड़ा काम है, किसी में इतनी सारे अवगुण ही अवगुण दिखाई दे रहे हैं, उसमें गुण देख लेना। वास्तव में हमें हम ज्यादा उन्हीं से सीखते हैं जो हमारे अवगुण देखते हैं, जो हमारे प्रति बहुत शुभकामनाएं रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं और हमेशा ही सहयोग देते हैं, उससे हम कम सीखते हैं। ज्यादा किससे सीखते हैं? जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जो रोज निंदा करने के लिए खड़े ही है, जो विरोध करते हैं, जो अपमान करते हैं, जो बुरी बुरी बातें करते हैं, वो रियल शिक्षक है। क्योंकि उनके प्रेजेंस में हम कैसे रहते हैं? अलर्ट रहते हैं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे हित चिंतक, शुभ चिंतक, शुभांक्षी, जो हमारे प्रति बहुत तारीफ करते हैं, बहुत ही हमारी स्तुति करते रहते हमेशा, तुम ये हो, तुम वो हो, उनसे क्या फायदा है? उससे तो हम बाह्यमुखी हो जाते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और अपमान होता है तो व्यक्ति बाह्यमुखी होता है या अंतर्मुखी होता है? अंतर्मुखी हो जाता है, एकदम चुप्पी हो जाता है। और स्तुति होती है तो बाह्यमुखी। तीसरी शक्ति, चौथी संबंध की शक्ति। तो ये चार शक्तियां हैं। मुख्य चर्चा है पहली, शरीर। एक है शरीर, एक है आत्मा। शायद हमने आत्मा का इतना ज्यादा चिंतन किया कि शरीर का चिंतन छूट चुका है। परंतु शरीर और आत्मा जैसे एक है, क्योंकि अगर आत्मा शरीर में कुछ होता है तो आत्मा को कुछ होता है, अगर आत्मा को कुछ होता है तो शरीर को कुछ होता है। आज की मुरली में एक भाग की चर्चा है केवल, कि आत्मा अगर शक्तिशाली हो जाए तो शरीर पर क्या होता है, पर यदि शरीर शक्तिशाली होता है तो उसका भी आत्मा पर प्रभाव पड़ेगा। यदि शरीर निरोगी है तो अपने आप आत्मा भी निरोग का अनुभव करती है। और शरीर जिस दिन बीमार है उस दिन योग करने की इच्छा होती है क्या? 102 बुखार करो, अशरीरीपन, परम धाम में जाओ, जाती है क्या आत्मा? बदन दर्द हो रहा है, उठने की इच्छा होती है अमृत वेला? शरीर पर जो कुछ होता है वो सीधा आत्मा पर होता है, आत्मा पर जो कुछ होता है शरीर पर होता है। वन यूनिट, एक ही है। जैसे हम कहते तो है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, पर जब शरीर की बीमारी आती है तो आत्मा उड़ जाती है, फिर मैं शरीर हूं बस यही रह जाता है। तो चार शक्तियों में पहली बाबा ने कहा शरीर, दूसरा बताया मन को शक्तिशाली बनाना, तीसरा बताया धन ज्ञान को बढ़ाना, चौथा बताया संबंध, संबंध को ठीक ठाक करना। अपने जो संबंधों में फ्रैक्चर्स हुए हैं, टूटे हैं, रिपेयर की आवश्यकता है, उसको अमृत वेले बैठ के थोड़ा ठोक पीट करनी है सकाश के द्वारा। क्योंकि जब तक संबंध बिगड़े हैं तब तक योग नहीं लग सकता, उसी व्यक्ति का चिंतन चालू रहेगा। इसके लिए योग के लिए आवश्यकता है संबंध को ठीक कर दो, किसी को माफ कर दो और किसी से माफी मांग लो, दो ही तो काम करने हैं, बड़े काम है पर ये, और यही नहीं होता। जीवन बीत जाता है पर किसी को हमने माफ किया ही नहीं है या किसी से माफी मांगी ही नहीं है, दो ही काम है बस, सारा जीवन संवर जाएगा। माफी मांग लो या माफ कर दो, सारे संबंध ठीक। साधना का पथ है, सिद्धियां मिलेगी, सिद्धियां स्वीकार न करो। एक ये बात कही, इसके पहले कि हम शरीर की चर्चा पर आए पहले बाकी सब पूरा कर लेते हैं, क्योंकि शरीर की चर्चा सबसे शक्तिशाली चर्चा है, शरीर की शक्ति, क्योंकि उसमें ढेर सारी बातें कही है। तो शक्तियों को इस मुरली में तीन चार बातें हैं। एक तो भविष्यवाणियां की है, क्या? एक समय आएगा दृष्टि से तुम बिगड़े हुए काम को ठीक कर सकोगे, एक। दूसरा, तुम जो डायरेक्शंस दोगे वो सिद्ध होंगे। तीसरा, ख्याल ख्वाब में भी जो नहीं होगा जो वैसा वंडरफुल पार्ट चलेगा। ठाकुर ही तैयार नहीं हुए तो भक्त कहां से आएंगे। तो हे ठाकुरो और ठाकुरानी हो तैयार हो जाओ, नहीं तब तक भक्त नहीं आएंगे। इष्ट हो तुम, विशेषताओं को प्रत्यक्ष करो। तुम हो कौन बाप जानते हैं, यहां पर यह वाक्य आता है। तुम हो कौन इन्वर्टेड कॉमा बाप जानते हैं। तो सिद्धियां शक्तियां। और बाबा ने एक बहुत जबरदस्त बात कही है कि सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना है, नहीं तो सिद्धियों में खो जाएंगे। इसीलिए सभी धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सिद्धियों के प्रति आकर्षित ना होना। सिद्धि आ गई कि पतन चालू हो जाता है। जैसे एक योगी बैठा है झाड़ के पास, समुद्र है, समुद्र में एक नाव जा रही है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, 40 लोग। एक भगत उसके पास आता है कि हमने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए महात्मा हो, हमें भी आपकी सिद्धियां देखनी है। वो कहता है अभी दिखाता हूं, और आदेश देता है हवा रुक जा, हवा को आदेश देता है, हवा रुक जाती है, वो नाव वो जहाज डूब जाता है क्योंकि हवा रुक गई और जितने लोग सारे लोग उसके अंदर के मर गए, उनके मौत का जिम्मेदार ये शक्तियां खलास, विकर्म कर दिया ना। सिद्धियां, इसके लिए सिद्धियां होगी। सिद्धियां जैसे कल क्या होने वाला है कईयों को पहले ही पता चल जाता है। थॉट रीडिंग, माइंड रीडिंग, किसी के मन को रीड कर लेना, किसी के थॉट को रीड कर लेना, ऐसे बहुत सारी चीजें। दूर श्रवण, दूर ध्वनि, स्वप्न में दिखता है किसी किसी को, दूर की चीजों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है सुपर पावर्स की, सिद्धियों की। पर वो आ गई और उसका यदि अभिमान हो गया तो पथ भ्रष्ट हो जाता है योगी। इसके लिए सिद्धियां आएगी पर उसको छिपा के रखना है, या तो उसका वर्णन या नहीं करना है। करोगे तो अभिमान आएगा। जैसे बीच में एक बार एक माता मिली थी तो वो कह रही थी कि सेंटर पर हम हैं, और जैसे ही मुरली क्लास पूरी हो जाती है तो सारे लोग मेरे इर्द गिर्द आके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हीलिंग पावर आ गई है। किसी के घुटने में दर्द है, मैं ऐसे हाथ रखती हूँ, ध्यान लगाती हूँ तो वो दर्द चला जाता है। किसी को कुछ हो रहा है तो मैं कुछ करती हूँ तो कुछ हो जाता है, और उसको जैसे वरदान मिला है, वो हीलिंग पावर्स फटाफट ठीक करने लगती है। परंतु उसमें खतरा है, कर्म फिलॉसफी में इंटरफियर कर रहे हैं किसी के, और अभिमान आ सकता है। किसी किसी को आत्माएं दिखती है, किसी किसी को कुछ होता है। तो ये सारी सिद्धियां हैं पर बहुत खतरे हैं इसमें। इसलिए शास्त्रों में भी कहा है और बाबा ने भी आज कहा, सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना है। कुछ हो रहा है, प्रकट हो रहा है, होने दो, ठीक है। हम कहे बारिश आ रही है, रुक जा, रुक गई, तो पहला काम क्या करते हैं, सबको जाके बताते हैं, बाबा से योग लगाए बारिश रुक गई, बारिश ही नहीं आ रही है, 6 मास हो गए योग लगा रहे हैं, बारिश आ गई। पर अभी इतनी ज्यादा बारिश आई कि लोग मर रहे हैं, किस किस ने योग लगाया था। प्रकृति अपना काम कर रही है, उसको करने दो। प्रकृति को सकाश ही देनी है तो ये सकाश नहीं तो कि बारिश आ जाए या रुक जाए, पवित्रता की सकाश दो बस। फिर वो बारिश आए या न आए ये उसका काम है। प्रकृति के नियमों के, प्रकृति के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करना है, और ना ही कर्मों के डिपार्टमेंट में इंटरफियर करना है। ये 2 डिपार्टमेंट है। मैं पतित को पावन बनाने आया हूं, तुम्हारी खांसी से मुझे कोई लेना देना नहीं, ना तुम्हारे शरीर की बीमारी से मुझे कोई लेना देना है, ना तुम्हारे धंधे से मुझे कोई लेना देना है। मुरलियों में आता है, हाँ वो संबंध है तो सुना सकते हैं, बता सकते हैं, पर भोगना तो हर एक को अपनी बीमारी खुद है। तो अभी आते हैं मुख्य पर, शरीर। क्या कहा शरीर की शक्ति के लिए? जब आत्मा स्वस्थ है तो क्या होता है शरीर में? सूली से काटा, बीमारी हिसाब किताब, सूली से काटा एक, दूसरा बीमारी के चिन्ह इतने प्रकट नहीं होते और चेहरे पर नहीं दिखाई देते, कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। कष्ट के वाइब्रेशन वो आत्मा नहीं फैलाएगी। कौन से वाइब्रेशन फैलाएगी? संतुष्टता के। हमने दादी जानकी को देखा है, सभी ने देखा है, शरीर में बहुत सारे हिसाब किताब थे परंतु स्थिति बहुत ऊंची, टॉप। आत्मा स्वस्थ थी, शरीर में चाहे जो कुछ हो रहा है, आत्मा नीचे नहीं आएगी। शरीर को भी स्वास्थ्य का अनुभव। और ब्राह्मण अलौकिक जीवन में तुम्हें कौन सा वरदान मिला है? सदा स्वस्थ भव। और यहां बाबा ने कहा दो शक्तियों का वर्णन किया है जो बीमारी में यूज करनी है, समाना और सहन करना। सहन करना है शक्ति। जब चाहो तब शक्तियों का आह्वान करो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, राजे हो, राजयोगी हो। बीमारियां जो कुछ हो रहा है, पहला तो वो आए ही नहीं, इसका पुरुषार्थ। और दूसरा अगर आ जाती है तो सामना करना, सहन करना, अचल अडोल रहना, स्थिर रहना, शक्तिशाली रहना, शक्तियों का आह्वान करना, ये काम करना। और क्या हो जाएगा? आत्मा शक्तिशाली होगी तो ऐसी आत्मा क्या नहीं करेगी दूसरों के सामने अपनी बीमारी का वर्णन। सबसे ज्यादा बीमारी किससे बढ़ती है? जितना हजारों लोगों के सामने उसका वर्णन किया जाए वो इधर प्रिंट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। यहाँ पे दर्द है, वहां दर्द है, ये होता है, वो होता है। एक को सुनाया, वो गया, दूसरा आया, वो सुनना भी नहीं चाहता, फिर भी उसको सुना रहे हमें क्या क्या होता है। फिर वो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, सबको सुनाते फिर रहे क्या हो रहा है बीमारी। मुझे सिर दर्द है, सिर दर्द है, सिर दर्द है, और बढ़ेगी। बाबा ने कहा वृद्धि होगी बीमारी की। कितना अच्छा वाक्य है, जितना वर्णन करेंगे। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो ठीक है, जब तक हम बताएंगे नहीं उनको पता कैसे चलेगा, निदान कैसे होगा, इलाज कैसे चालू होगा। परंतु जो दूसरे हैं, अनरिलेटेड लोग, उनके सामने अपनी बीमारी का वर्णन करना, बीमारी बढ़ेगी। और बीमारी आई तो क्या कहो? अव्यक्त महावाक्य क्या है बाबा के? वाह व्याधि वाह, खुशी खुशी से विदा हो जाएगी। तो जैसे हम कह रहे थे शरीर और मन का क्या संबंध है, इसको समझना है और अपने बॉडी की भाषा रीड करनी है। कब शरीर आराम मांगता है उसको समझना है, क्योंकि कई बार ऐसा आएगा कि अचानक थकान आएगी, शरीर रेस्ट मांग रहा है और फिर भी हम उसको रेस्ट नहीं दे रहे और दौड़ा रहे उस घोड़े को, टूट कर गिरेगा। वो रेस्ट मांगता है कभी कभी, कभी कभी उसमें बहुत चपलता और बहुत शक्ति होती है, पर कभी कभी वो कहता है अभी बस रुक जाओ। हम कहते हैं नहीं, सेवा करनी है, कर रहे, और फिर धड़ाम से गिरता है। और शरीर को स्वस्थ रखना ये योगी का कर्तव्य है, क्योंकि जब शरीर बीमार पड़ता है तो आत्मा भी बीमार होती है, प्रभाव तो पड़ता ही। ऐसे एक के दुख के महान योगी है जो बहुत ऊंचे है, शरीर को कुछ भी हो रहा है पर उनको प्रभाव नहीं है। हमें याद है एक बार हम दिल्ली में थे, कॉन्फ्रेंस थी 2012 शायद 11 या 12, अचानक फोन आया कि जानकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, रात में जल्दी आ जाओ, कॉन्फ्रेंस छोड़ दो, आ जाओ। सुबह सुबह फ्लाइट ली और सुबह सुबह पहुंचे, रात में तबीयत बहुत खराब थी दादी की। सुबह सुबह गए कॉटेज में, दादी कहाँ है? डायमंड हॉल में क्लास चालू है। ठीक हो गई? हाँ सुबह ठीक हो गई। प्रकृति जीत आत्मा थी, तो हमें भी ऐसा प्रकृति जीत बनना है। एक दो बातें और है शरीर की, ट्रैफिक कंट्रोल की बात है। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्वमान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझ में शिव की सारी शक्तियां है, मैं शिव शक्ति हूं, सब शक्तियां मुझ में समाहित है, इस शक्तिशाली स्वमान के साथ। ये टाइटल भी है और श्रेष्ठ स्थिति भी है। बाबा ने कहा शक्तियां अगर नहीं होगी तो अर्जी डालते रहेंगे, तो अर्जी डालने वाले नहीं राजी रहने वाले बनो। तो जैसे कहा कि आत्मा का प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है, आत्मा स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, उसी तरह यदि शरीर स्वस्थ है तो आत्मा भी पुरुषार्थ का उमंग उत्साह रहेगा उसमें। शरीर ही बीमार है, बार बार बीमार पड़ रहा है, तो टाइम जा रहा है, दवाइयां, हॉस्पिटल्स, ढेर सारी बातें, दिनचर्या डिस्टर्बेंस, बुद्धि में वही चीज, इस उंगली में दर्द है, सारा ध्यान इस उंगली की तरफ है, कहां से योग और कहां से ज्ञान और ज्ञान की गहराई। तो स्वास्थ्य संबंधित 7 बातें हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ए, अनाज की मात्रा कम करनी है अपने आहार में, अनाज की मात्रा कम करते जाओ। ढेर सारे रिसर्च अवेलेबल है, जिनको किताबें पढ़नी है पढ़ सकते हैं, जिनको मेडिकल साइंस की किताबें पढ़नी है वो भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या हो रहा है उससे। वो हेवी डाइट है, जितना आहार हल्का होगा आत्मा अशरीरीपन का अभ्यास हो सकेगा। सुबह भी अनाज, दोपहर में भी अनाज, रात को भी अनाज। अनाज में 3 चीजें मुख्य है, दाल रोटी चावल। सुबह भी रोटी, दोपहर में भी रोटी, शाम को भी रोटी। हेवी डाइट है, योगी का आहार सूक्ष्म है। ए बी बेकरी, बेकरी और बेकरी प्रोडक्ट्स कब्ज करने वाले हैं, कॉन्स्टिपेशन लाने वाले हैं, वो पचता नहीं है, वहां पर ठहरा रहता है। और योग के लिए सबसे आवश्यक चीज है क्लीन स्टमक, क्लीन स्टमक, पेट साफ। जितना होगा उतना योग शक्तिशाली होगा, पावरफुल लगेगा, नींद जरा भी नहीं आएगी। अनाज में थोड़े दोष है, प्रमाद है उसमें, नींद है, जड़ता है, आलस लाता है। इसलिए दोपहर में भोजन करने के बाद क्या करने की इच्छा होती है, सोने की इच्छा होती है, एकदम सो जाओ, कोमा सीधा। अगर कोई ना उठाए और सेवा ना हो तो उठने का कोई चांस ही नहीं। इसलिए संसार में लोग संडे के दिन सबसे ज्यादा सोते हैं, कमी पूरी करते हैं। योगी तो निद्रा जीत होता है, वो प्रयत्न नहीं करता है, नींद पर काम नहीं करता है, नींद अपने आप आती है और अपने आप कम भी होने लगती है, क्योंकि अनाज की मात्रा शरीर में कम है। दूसरा बेकरी, सी कुक्ड, जितना पकाया हुआ अंदर डाला जाएगा उतना शरीर भारी रहेगा, जितना अपक्व होगा, कम पकाया हुआ होगा, स्टीम्ड वाला होगा, उतना शरीर में ऊर्जा रहेगी, स्वास्थ्य रहेगा, क्योंकि प्रकृति के समीप है, प्रकृति के नियमों में चल रहे, प्रकृति के नियम तोड़े कि बीमारी आई, अचानक कहाँ से बीमारी आ जाती है। रात में व्यक्ति सोया है, दूसरे दिन उसको हार्ट अटैक आ जाता है, मैं तो एकदम ठीक था, अचानक कुछ भी नहीं होता, उसकी तैयारी लंबे समय से चालू थी, दिन रात शरीर में वो डाला जा रहा था जो आहार ही नहीं है हमारा। और हमने इतने सारे मेथड्स इन्वेंट कर रखे कुकिंग के। तीसरा, चौथा डी, डी अर्थात डू नॉट। 4 चीजें हैं या 3 चीजें ले लो। पहला, शक्कर कम कर दो या हटा दो, आवश्यकता नहीं है, ग्लूकोज बाकी सब चीजों से मिल जाएगा। दूसरा, नमक कम कर दो या हटा दो, रिप्लेस करो, वो एडिक्शन है। मैदा चिपका रहता है आंतों में लंबा समय तक, भारी करता है, कब्ज लाता है, वाइट पॉइजन है सारे तीनों भी। चौथा छोड़ देते, ई एनिमा, प्लेन वाटर एनिमा, ये संजीवनी है, शक्ति है इसमें, जो इस मार्ग पर चलेगा शुरुआत में उसे इसका सहारा लेना पड़ेगा, जिससे इतने लंबे समय जो बड़ी आत है और उसमें जो कुछ मल टॉक्सिन्स भरे हैं वो बिना इसके नहीं निकल सकते। क्लीन स्टमक ये योग की पहली क्राइटेरिया है, और कॉन्स्टिपेटेड बॉडी एंड माइंड कैन नॉट डू योगा। और जिन्होंने अभी तक प्रयोग नहीं किया है वो कर सकते हैं, और फिर परिणाम जो सामने आएंगे वो चमत्कारिक होंगे। जो हल्कापन शरीर में होगा और जो अशरीरीपन की अवस्था होगी वो आज तक ऐसी होगी कि जैसे टर्निंग पॉइंट आ गया जीवन में, जो आज तक अनुभव नहीं किया वो उस दिन हो जाएगा। EF फास्टिंग वंस अ वीक, हफ्ते में एक दिन उपवास। किसी ड्राइवर को कहो गाड़ी चलाओ 7 दिन कंटिन्यूअस, रुकना ही नहीं बिल्कुल, क्या हालत हो जाएगी उसकी। हम यही कर रहे हैं पेट के साथ, सुबह से रात तक उसको खिलाए जा रहे हैं। वो कहता है तड़प रहा है, रेस्ट, मुझे आराम चाहिए। उसको आराम दो थोड़ा, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार। जो एकदम नहीं कर सकते वो 12 घंटे से चालू करेंगे। सफल हो गए 14 पर ले जाओ, 16 में ले जाओ, 18, फिर 24। लास्ट जी ग्रीन्स, हरे को अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा लाओ, अर्थात सलाद। जो कुछ हरा है प्रकृति का है, ग्रीन ब्लड कहा जाता है उसको, क्लोरोफिल। तो जितना आहार प्राकृतिक होगा उतना स्वास्थ्य होगा, और जितना स्वास्थ्य होगा आत्मा शक्तिशाली होगी, आत्मा में नई ऊर्जा आएगी। तो ये थी 4 बातें, शरीर, मन, धन और लास्ट संबंध। अच्छा, ओम शांति।